नमस्कार एसबीएस हिंदी से, मैं हूं साहिल मकड़ और आज मेरे साथ मैक्वेरी यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स से हैं डॉक्टर दलबीर अहलावत। डॉक्टर अहलावत, आपका एसबीएस हिंदी पर स्वागत है।
धन्यवाद साहिल जी।
डॉक्टर अहलावत, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तनाव है रशिया और यूक्रेन में, इसके पीछे वजह क्या है और ये तनाव जो है बढ़ता जा रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है?
देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ। 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो ये 15 देशों में बट गया। उसके बाद क्या था कि जो स्टेट थे, जो टूट के बने थे, वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ जाने लगे। और जब वेस्टर्न यूरोप की तरफ जा रहे तो उसमें क्या है कि नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने लगे। उससे क्या हुआ कि जो यूरोप की फोर्सेस थी वो रशिया के बॉर्डर के नजदीक आने लगी, जिसने क्या किया कि रशिया के लिए बहुत ही सिक्योरिटी चैलेंजेस आ गए। और उन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए रशिया ने अपना प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, जिससे कि एक्सपेंशन, जो नेटो के एक्सपेंशन, वो इसके बॉर्डर तक ना आ जाए। तो उसी क्रम में यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। अभी यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता है नेटो, और यदि नेटो ज्वाइन कर लेता तो रशिया के बॉर्डर पे फोर्सेस आ जाएंगी, इसलिए रशिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा वो खतरा पैदा हो जाएगा।
अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग हुई थी, जिसमें जिस क्वाड में जो है अमेरिका है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन देशों ने जो है रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर काफी बातचीत भी की। तो आपको क्या लगता है कि क्या निष्कर्ष निकला, और आपने उनके बयान भी देखे सभी देशों के, तो आपको क्या लगता है कि इन देशों का क्या रुख है इस पूरे मुद्दे पर?
इसमें क्वेड, देखो स्टार्टिंग में लगता था कि रशिया वॉर के लिए जाएगा, तो उसको देखते हुए जो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो आपने सही कहा कि चार देशों के बीच में है, इनकी एक मीटिंग हुई और इनका एजेंडा था कि जो स्थिति है अभी उसको, उससे कैसे डील किया जाए। इसलिए जब इन्होंने एंड में एक स्टेटमेंट पास की, मीडिया स्टेटमेंट आई, तो उसमें क्या था कि चाइना के ऊपर, बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, सिचुएशन इन म्यांमार, इन टॉपिक्स के ऊपर तो डिस्कशन था, लेकिन वो यूक्रेन के ऊपर साइलेंट थे। इसका मतलब ये है कि चारों देशों में सहमति नहीं हुई, और सबसे ज्यादा इसमें क्या है कि इंडिया रशिया के मामले में साइलेंट रहा, क्योंकि इंडिया को अपनी इक्वेशंस, जो अपने संबंध है रशिया से, उनको भी प्रियोरिटी दे दी है।
जी, आपने जैसे बताया डॉक्टर साहब कि इंडिया ने रशिया के साथ अपने जो संबंध है उनको भी प्राथमिकता दी है, क्योंकि भारत और रशिया के संबंध आज के नहीं है, भारत और रशिया के संबंध सबसे पुराने संबंध है। रशिया भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर भी रहा है और हर जगह रशिया ने भारत का साथ भी दिया है। तो भारत के लिए रशिया से संबंध बिगाड़ना इतना आसान नहीं है, चाहे भले ही वो क्वाड का हिस्सा हो। तो पूरी स्थिति पर भारत का क्या नजरिया है?
देखिए, भारत ने जो स्टेटमेंट पास की है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उसने ये कहा कि इस मामले को शांति प्रिय ढंग से सोल्व करना चाहिए और डिप्लोमेटिक मेजर्स इसमें एक्टिवेट करने चाहिए। जो इंडिया का पॉलिसी स्टेंस है वो ये है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अभी वोटिंग हुई तो इंडिया ने उसमें एब्सटेन किया। उसके बाद से क्या है कि आपने जैसा सही कहा कि रशिया और इंडिया के संबंध काफी गहरे हैं और लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और इंडिया का जो 70% वेपन सप्लाई सिस्टम है वो रशिया के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें क्या है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन अभी इंडिया के लिए एक बहुत अहम चैलेंज आ गया कि इसमें रशिया और चाइना में आपस में एक बहुत ही एकजुटता हो रही है। जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट पैरा ओलंपिक्स के टाइम पे चाइना गए और उन्होंने एक बहुत लंबी स्टेटमेंट पास की, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो स्पेसिफिक फोकस था, चाइना ने रशिया को यूक्रेन इश्यू में सपोर्ट किया और रशिया ने चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में सपोर्ट किया। तो इससे क्या है कि दोनों देशों के इंटरेस्ट इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट वहां पे क्लैश भी हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ही स्ट्रोंगली सपोर्ट करता भी क्वेड को और इंडो पैसिफिक रीजन को, तो उसमें जो मेन है वो है चाइना फैक्टर। अब रशिया यदि चाइना के नजदीक जाएगा तो इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि अब चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, अभी भी बॉर्डर पे मिलिट्री है, तो उससे यदि इंडिया को थ्रेट परसेप्शन है तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाएगा या और अपना डाइवर्सिफाई करेगा रिलेशंस, जैसे ये और देशों के साथ इम्प्रूव कर रहा है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और भी मेजर कंट्री जो यूरोप में है उनके साथ।
जी, पर डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये क्या भारत को आज की स्थिति में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों से एब्सटेन करना ठीक है?
देखिए, इसमें मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक जो इक्वेशन वहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चल रही थी वो शायद कैलकुलेट की होगी इंडिया ने, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं, तो उसमें से टोटल 15 हैं, और यदि उनको रशिया के अगेंस्ट यदि वो वोट पास करना है तो 9 उनको वोट्स चाहिए वहां पे, और इसमें अमेरिका के साथ 10 वोट मिल गए तो रेजुलेशन तो पास भी हो गया, और इंडिया ने उस रेजुलेशन के अगेंस्ट नहीं गया, अमेरिकन साइड को भी सपोर्ट नहीं किया, रशिया को भी नहीं किया, तो इसी तरह से ये इंडिया ने एक बीच बचाव करके मेरे ख्याल से एक गुडविल डेवलप की है। लेकिन जैसे आपने कहा कि भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर के आ रहा है और ये कब तक एब्सटेन रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, इसमें इंडिया ने अपनी ही पॉलिसी पोस्चर्स अडॉप्ट की है, क्योंकि इंडिया को जो मेजर चैलेंज है वो चाइना से, चाइना ने बॉर्डर पे प्रेशर डाल लिया है और चाइना ने इंडियन ओशन में भी प्रेजेंस दिखाई है, इसके साथ साथ चाइना इंडिया के जो नेबर्स कंट्री हैं उनको वेपन्स सप्लाई करता है, जैसे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को, तो इंडिया ने काउंटर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। पहले जैसे कि ये मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में डेवलप किया, और एक्ट ईस्ट में अभी इंडिया क्या है कि फिलीपींस को इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल्स सप्लाई की है, और ब्रह्मोस सप्लाई करने का एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है कि चाइना और फिलीपींस के रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं हैं, और यदि अच्छे नहीं हैं तो फिलीपींस ने इंडिया से मिसाइल्स खरीदनी स्टार्ट कर दी है, तो दिस मीन्स कि जो देश खुश नहीं है चाइना से वो इंडिया की तरफ आते जा रहे हैं। इसी तरह वियतनाम है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इन कंट्रीज ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया से वेपन सिस्टम खरीदने में, क्योंकि इनके रिलेशन चाइना से ठीक नहीं है, इसलिए ये इंडिया की तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है। और उस ध्रुवीकरण में क्या है कि इंडिया ने एक बहुत ही एक्टिव पॉलिसी के बजाय, प्रोएक्टिव पॉलिसी के बजाय एक पेशेंस मेंटेन की है, अपना एक स्टेचर मेंटेन किया है, और उस स्टेचर को मेंटेन करते हुए वो बाकी के जो साउथ ईस्ट एशिया में देश हैं उनको इंडिया एज ए वायबल अल्टरनेटिव ऑफ चाइना अमर्ज हो रहा है, और इंडिया भी उस चीज को बहुत सीरियसली ले रहा है।
जी डॉक्टर दलबीर, इस जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।